हिंदी में स्त्री लेखन दशा और दिशा। पृष्ठ संख्या 40। नारीवाद की नई भाषा, नया दृष्टिकोण नजर आ रहा है। हमारी जिस खामोशी ने हमें कैद कर रखा था, अब तार्किकता और प्रश्नाकूलता की तरफ बढ़ रही है। हमारी कविता में नारीवाद सहजता, गंभीरता और बिना किसी अवरोध के अपनी तकलीफों, विषादों और व्यथाओं को व्यक्त कर रहा है। यह एक क्रांतिकारी बदलाव है। संदर्भ ग्रंथ कोंडेपुड़ी निर्मला, पुस्तक आपका जवाब क्या है, पृष्ठ संख्या 99। पैराग्राफ चेंज। हिंदी में स्त्री लेखन की क्या स्थिति, दशा और दिशा है, तथा स्त्री लेखन की क्या विशिष्टताएं, विलक्षणताएं एवं अंतर विरोध है, इस विषय पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। कुछ एक आलोचकों लेखकों को स्त्री लेखन की स्थिति पर घनघोर असंतुष्टि है, तो कुछ एक आलोचक लेखिकाएं पूरी तरह से संतुष्ट न होकर भी इसके भविष्य दिशा को लेकर आस्थावान हैं। बहुत से आलोचकों को तो स्त्री लेखन गुड्डो गुड़ियों का खेल ही प्रतीत होता है। सवाल तो यह है कि स्त्री लेखिकाएं क्या अपने अनुभवों, यथार्थ संघर्षों को पूरी तरह से साहस के साथ व्यक्त कर सकी हैं? क्या उनका लेखन पितृसत्तात्मक नारी विरोधी नियमों, कानूनों की धज्जियां उड़ा रहा है? क्या उनके पास एक स्त्री होते हुए भी स्त्री दृष्टि है? क्या वे अब भी पुरुष की मानक दृष्टि से देख व लिख रही हैं? क्या वे उस पैतृक भाषाई मुहावरे को ध्वस्त कर अपनी नई भाषा गढ़ सकी है? स्त्री लेखिकाओं के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं? पिछले 4-5 दशकों से स्त्री लेखन की जो परंपरा रही है, उसमें अब तक क्या क्या गुणात्मक बदलाव आए हैं? वे बदलाव कौन से हैं, कैसे हैं? चित्रा मुद्गल का तो यहाँ तक स्वीकारना है कि लेखन लेखन होता है, नर मादा नहीं। उनका यह स्वीकारना कितना सही है और कितना गलत, इसकी पड़ताल तो आगे की जाएगी। लेकिन स्त्री लेखन ने निश्चित रूप से कुछ ऐसे तीखे ज्वलंत अंतर विरोधों, विरोधाभासों, प्रश्नों को सामने रखा है, जिससे स्त्री लेखन की एक अलग पहचान बननी शुरू हुई है। कृष्णा शोभती, मन्नु भंडारी, गगन गिल, मृदुला गर्ग, महाश्वेता देवी की रचनाओं में स्त्री लेखन की एक अलग पहचान सामने आई है। यह बदलाव इसी दशक में सर्वाधिक आया है, क्योंकि इनके लेखन में स्त्री के अधिकारों के प्रति सजगता, आक्रामकता, तीखापन तथा पैतृक समाज की कड़ी आलोचना हुई है। इस प्रकार के तेवर पिछले दशकों के स्त्री लेखन में कमजोर थे तो क्यों? पृष्ठ संख्या 41। इसमें संदेह नहीं है कि हमारे यहाँ दो तरह का स्त्री लेखन होता रहा है। पहली तरह के लेखन में स्त्री की परंपरागत छवि ही उभरी थी, तथा उसके पास स्त्री होते हुए भी स्त्री दृष्टि का अभाव था, यथार्थ की पकड़ ढीली थी। इसीलिए उनके लेखन में पितृसत्तात्मक नियमों की पहचान कमजोर ढुलमल थी, अंतर विरोधों पर चोट भी आक्रामक नहीं थी, को सूडो किस्म का माना गया, वहां यथार्थ की सतही तस्वीर ही बन पाती थी। उनके लेखन में मानवीय संबंधों का निरूपण तो था, लेकिन उनके पीछे जो राजनीतिक दृष्टि, विचारधारा, पितृसत्तात्मक नैतिक मूल्य काम करते हैं, उन पर विचार नहीं होता। हालांकि स्त्रीत्ववादी लेखिकाओं का यह दृढ़ विश्वास विचार रहा है कि कोई भी साहित्यिक कृति इन पितृसत्तात्मक नैतिकताओं, मूल्यों, धर्म, कानून तथा परिवार से मुक्त, निरपेक्ष, तटस्थ नहीं होती। उनमें निहित मानवीय संबंधों में पितृसत्तात्मक सामाजिक मर्यादाएं ही काम करती हैं। यहीं से स्त्री लेखन का एक नया खांचा तैयार हो जाता है। इसे तैयार करने में भी पितृसत्तात्मक नैतिकता का ही हाथ है, जो कि पूर्णतया स्त्री विरोधी है। पिछले 4 दशकों से स्त्री लेखन जिस विकास यात्रा को तय करता हुआ, विभिन्न पड़ावों, परिवर्तनों से गुजरता हुआ आज जहां पहुंचा है तथा आगे भविष्य में इसकी क्या दिशा होगी, इसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण के बिना क्या समझा जा सकता है? क्या 90 के दौर का स्त्री लेखन 80, 70 या 60 के दौर के स्त्री लेखन से भिन्न नहीं है? यदि वह भिन्न है तो उसके पीछे क्या ठोस इतिहास बोध नहीं जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बिना अपूर्ण है? आजादी के पहले का लेखन सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, आजादी के बाद का लेखन और शताब्दी के इस अंतिम दशक का लेखन किस गुणात्मक चेतना को लक्षित करता है? क्या हमें महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, कृष्णा सोबती के साहित्य से स्त्री की एक भिन्न छवि उभर कर सामने नहीं आती? महादेवी जी ने चौथे दशक में श्रृंखला की कड़ियां, भारतीय नारी की समस्या का विवेचन करने वाली पुस्तक लिखकर सिद्ध किया कि वे नारी के संतप्त और अभिशप्त जीवन के प्रति कितनी चिंतित, ईमानदार और प्रतिबद्ध थी। क्या आज किसी लेखिका ने महादेवी के उस काम को आगे बढ़ाया है? महादेवी वर्मा इतनी संवेदनशील कवित्री हो या नहीं, लेकिन उनका गद्य साहित्य जो इतना अनुभूतिपूर्ण, सशक्त, क्रांतिकारी है कि उपलब्धियों पर विचार नहीं किया गया। उन्हें रहस्यवादी कहकर उनके लेखन की ऐतिहासिक दृष्टि सामाजिक चेतना की घनघोर उपेक्षा की गई है। गगन गिल ने इस सच्चाई को सामने लाते हुए तर्क दिया है कि आजादी से पहले और आज, पृष्ठ संख्या 42, महिला लेखन के तेवर में निश्चित ही बड़ा फर्क है। आजादी से पहले की सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा हर सामाजिक रचनात्मक आंदोलन में बराबरी के स्तर पर शामिल रही, अपने समय के सभी जोखिम उठाए, अपने समकालीन रचनाकारों के प्रति उनका सौहार्द, जिसका विवरण हम उनके भावपूर्ण संस्मरणों में पढ़ते हैं, एक स्वस्थ परंपरा में ही संभव हो सका, जो दुर्भाग्य से आज नहीं है। आज हम दो मानदंडों वाले समाज में रहते हैं। चिड़ियों के साथ तो चिड़िया उड़ सकती है, लेकिन चिड़ी मारों के साथ संदर्भ ग्रंथ है इंडिया टुडे साहित्य वार्षिकी 1996, लेखिका गगन गिल, पृष्ठ संख्या 20। यह भी एक विचित्र विडंबना है कि हमारे पैतृक समाज के मानदंड दोहरे हैं। पैतृक समाजों में स्त्री लेखन की अपनी चुनौतियां होती हैं। क्या कारण है कि स्त्रियां आत्मकथा संस्मरण नहीं लिखती? क्या आज लेखिकाओं और पुरुष लेखिकाओं के बीच वे सौहार्दपूर्ण, आत्मीयतापूर्ण संबंध हैं जो महादेवी वर्मा जी की पथ के साथी में मिलते हैं? जब तक ऐसे अंतर्विरोध, विरोधाभास नहीं मिटते, तब तक लेखन में भी वह आत्मीयता, मानवीयता पैदा नहीं हो सकती। अधिकतर स्त्री लेखन में वह स्त्री दृष्टि ही नहीं है जो आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। दुर्भाग्यपूर्ण यह भी है कि हमारे यहाँ महिला लेखकों ने स्वयं भी कोई बड़े जोखिम नहीं उठाए, न बीहड़ यात्राएं की, न अनजाने अनुभवों के समक्ष प्रस्तुत हुई, न अपनी विशाल साहित्यिक संपदा का ही ठीक से अध्ययन किया। क्या कारण है कि आजादी के बाद हमारे यहाँ एक भी महिला या पुरुष महाश्वेता देवी जैसा नहीं हुआ जो आदिवासियों की कथा लिख सके? इरावती कर्वे जैसी विदुषी नहीं हुई जो एक नया पौराणिक ऐतिहासिक चिंतन दे सके? हमारी अधिकांश महिलाएं काउच लेखन करती रहीं। संदर्भ ग्रंथ गगन गिल, इंडिया टुडे साहित्यिक वार्षिकी 1996, पृष्ठ संख्या 20। जब तक स्त्रियां लेखन की दुनिया के लिए जबरदस्त बीहड़ यात्राएं, संघर्ष नहीं करती तब तक साहित्य में स्त्री दृष्टि स्त्री चेतना का विकास संभव है? ? क्यों वे अपने अनुभवों जीवन संघर्षों को पूरी नैतिकता विवेक और साहस के साथ अभिव्यक्त नहीं कर रही हैं? क्यों वह उन पैतृक प्रतिमानों बने बनाए नियमों धार्मिक नियमों पर अपनी ही पारंपरिक संस्कारी दृष्टि के विरुद्ध डटकर खड़ी नहीं होती? क्यों वह उन पाखंडों जर्जरित रूढ़ियों के खिलाफ खड़ी नहीं होती? इस गफलत के खिलाफ प्रतिरोध क्या जरूरी नहीं? उन अदृश्य काली दीवारों जंजीरों श्रृंखला की कड़ियों को तोड़ना ही सबसे बड़ा काम है। यदि उनके लेखन में वह धार तीखापन चेतना प्रतिरोध करने का साहस होगा तभी स्त्री समाज की सोई हुई चेतना जाग सकती है तथा पुरुष सावधान हो सकते हैं, अन्यथा स्त्री की स्थिति में बदलाव असंभव है। पैराचीन्स, जब तक स्त्री लेखिकाएं उन तमाम पैतृक असभ्य नियमों कानूनों का ठोस अध्ययन विश्लेषण नहीं करती उन अंतर विरोधों से नहीं टकराती अपने अधिकारों के प्रति पूरी तरह से सजग नहीं होती तब तक उनके लेखन में वह स्त्री चेतना का विकास संभव नहीं है जिसने पूरे समाज की चेतना को निर्धारित करना पृष्ठ संख्या 43 या बदलना है। स्त्री समाज की मुक्ति के लिए यह पहली शर्त है कि ऐसा जबरदस्त लेखन हो। प्रश्न उठता है कि स्त्री लेखिकाओं के लेखन में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? वह यथा स्थिति को बदल तोड़ क्यों नहीं रही? स्त्री लेखन के बारे में उनके भ्रम क्यों नहीं टूट रहे? पितृक समाज की आलोचना उनमें कमजोर क्यों है? प्रायः यह कहा जा सकता है कि स्त्री लेखन में स्त्री पुरुष संबंधों परिवार के बिखराव की ही अभिव्यक्ति होती है, वह भी अत्यंत सीमित और सतही रूप में ही। क्या यह सच नहीं है कि परिवार और स्त्री पुरुष के संबंध भी हमारे समाज का एक कटु यथार्थ है? प्रश्न यह नहीं है कि स्त्री लेखन घर परिवार बच्चे स्त्री पुरुष संबंधों के सीमित दायरों में बटा हुआ है, बल्कि प्रश्न तो यह है कि घर परिवार बच्चे स्त्री पुरुष के संबंधों का निरूपण वहां किस रूप में हो रहा है, उसके पीछे स्त्री दृष्टि क्या काम कर रही है। वह घर परिवार स्त्री पुरुष के संबंधों के पीछे सदियों से काम कर रही पितृक अनुशासकी तानाशाही अनुशासन को किस प्रकार समझ देख और दिखा रही है? परिवार का स्त्री के लिए एक अपना ही तानाशाही अनुशासन है, पितृक व्यवस्था है, नियम और कानून है जिसने स्त्रियों को बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। यदि स्त्री लेखन में ऐसा संघर्ष है तो वह स्त्री लेखन की ताकत है, सीमित दायरा नहीं। यही उसका अपना यथार्थ है जो किसी पुरुष पैतृक व्यवस्था का यथार्थ नहीं हो सकता। हाँ, पैतृक व्यवस्था के लिए वह खतरनाक होने की वजह से सीमित सतही यथार्थ अवश्य हो सकता है। वह एक स्त्री का यथार्थ है, स्त्री का यथार्थ भर न होकर आधी दुनिया की मुक्ति पीड़ा का प्रश्न है। यह दुनिया जो बाहर से जो दिखाई दे रही है आइसबर्ग के समान तीन छिपा हुआ हिस्सा ही हमारा वास्तविक समाज है जो बाहर से दिखाई नहीं पड़ता, वह अंडरवर्ल्ड है। वहां तक पहुंचना ही लेखन की असली बीहड़ यात्रा है। पाठकों को उसका अनुभव कराना ही रचना का धर्म है। पैराचेंज, महादेवी वर्मा ने श्रृंखला की कड़ियां लिखकर उन गुलामी की असंख्य जंजीरों को तोड़ने की का जोखिम उठाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके लेखन का स्त्री लेखिकाओं ने कोई लाभ नहीं उठाया, अन्यथा अब तक स्त्री लेखन और स्त्री जीवन की यह स्थिति न होती जिसको देखकर आज स्त्री लेखिकाएं स्वयं चिंतित हैं। ऐसा क्यों हुआ? इसका मुख्य कारण है कि स्त्री का दमन उत्पीड़न करने वाले दमनकारी उत्पीड़नकारी ताकतों के विरुद्ध स्त्री लेखन ने संघर्ष नहीं किया, तथा एक तरह का असंतुलित किस्म का ही लेखन सामने आता रहा, जिसमें या तो दयनीयता थी या असाधारण विद्रोह। संदर्भ ग्रंथ है महादेवी वर्मा, पुस्तक श्रृंखला की कड़ियां, अपनी बात भूमिका से। स्त्री लेखन से जिस प्रकार की अपेक्षाएं थी, जिस प्रकार के नैतिक विवेक, साहस और सच्चाई की जरूरत थी, उसका पृष्ठ संख्या 44 सर्वथा अभाव रहा। उनका कहना सही है, समस्या का समाधान समस्या के ज्ञान पर निर्भर है और यह ज्ञान के ज्ञाता की अपेक्षा रखता है। अतः अधिकार के इच्छुक व्यक्ति को अधिकारी भी होना चाहिए। सामान्यतः भारतीय नारी में इसी विशेषता का अभाव मिलेगा। कहीं उसमें साधारण दयनीयता है तो कहीं असाधारण विद्रोह, परंतु संतुलन से उसका जीवन परिचित नहीं है। संदर्भ ग्रंथ वही पृष्ठ भूमिका से। सही कहा है महादेवी वर्मा जी ने कि अधिकार के इच्छुक व्यक्ति को अधिकारी भी होना चाहिए, अर्थात यदि स्त्रियां अपने अधिकारों, स्वामित्व के अधिकारों से वंचित है तो क्या उनमें अधिकारों के बारे में चेतना भी है कि वे अधिकार उन्हें कैसे मिलेंगे, क्यों मिलेंगे और यदि मिलेंगे भी तो क्या भिक्षा वृत्ति से। संदर्भ ग्रंथ वही पृष्ठ भूमिका से। दुनिया के इतिहास में जहां भी कहीं स्त्री के स्वामित्व के अधिकारों की बात उठी है तो वह एक प्रखर स्त्री चेतना के द्वारा ही। उन स्त्रियों में अपने अधिकारों के प्रति जबरदस्त चेतना थी, इसीलिए उन्होंने वे तमाम बराबरी के अधिकार भिक्षा वृत्ति से न मांगकर संघर्ष करके ही अर्जित किया है। इसके लिए उन्हें बहुत कड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। क्या हमारे समाज में इस प्रकार की चेतना है? महादेवी वर्मा जी ने इस संबंध में सही ही कहा है कि इन्वर्टेड कमापन, हमें न किसी पर जय चाहिए न किसी से पराजय, न किसी पर प्रभुत्व चाहिए न किसी पर प्रभुता, केवल अपना वह स्थान वे स्वत्व चाहिए जिनका पुरुषों के निकट कोई उपयोग नहीं, परंतु जिनके बिना हम समाज का उपयोगी अंग बन नहीं सकेंगी। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ वही पृष्ठ संख्या 23। भारतीय नारी न प्रभुता की इच्छुक है न ही प्रभुत्व की, बल्कि वह तो अपना खोया हुआ स्वत्व अस्तित्व चाहती है, जिसके बिना समूचे समाज का विकास ही संभव नहीं। यदि आधी दुनिया पराधीनता की जंजीरों में जकड़ी हो, उसका अपना स्वत्व तक न हो तो वह क्या पूर्ण सभ्य और सुसंस्कृत समाज होगा? इस प्रकार की चेतना जगाने फैलाने वाला साहित्य कितना रचा गया है। स्त्री लेखन का अर्थ है वह साहित्य जिसमें स्त्री की दशा दुर्दशा दुर्भाग्य अवमूल्यन का ही चित्रण न हो, बल्कि उससे बाहर निकलने का भी दिशा निर्देश हो कि वह इस गफलत से कैसे मुक्त होगी। वह समाज के उन तमाम अभद्र अनैतिक नियमों के खिलाफ हो जो स्त्री को अवमूल्यित करते हैं, उसे अस्तित्वहीन बताते हैं, जड़ वस्तु की तरह। स्त्री के अधिकारों के प्रति शिक्षा का प्रसार ही स्त्री में चेतना ला सकता है, क्योंकि आज की तथाकथित शिक्षा ही उसे उस स्तर पर जागरूक नहीं कर सकी है जिसकी अपेक्षाएं थी। यह हमारी शिक्षा पद्धति शिक्षा की ही विकृतियां हैं जो लड़कियों को चेतनशील जागरूक नहीं बना सकी। केवल डिग्री प्राप्त करने से ही कोई शिक्षित नहीं हो जाता, यह तो शिक्षा को और शिक्षक की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार की किस उद्देश्य से शिक्षा दे रहा है, वह उसकी चेतना का कितना विकास कर रही है। जब तक स्त्री लेखन अन्याय अत्याचारों के विरुद्ध पृष्ठ संख्या 45 नहीं लिखा जाता, उसका प्रतिरोध नहीं करता, स्त्री सुरक्षा के लिए संघर्ष नहीं करता, तब तक वह यथास्थितिवाद का ही पक्षधर रहेगा। आजादी के बाद जिस प्रकार का स्त्री लेखन सामने आया, उसने स्त्री की परंपरित छवि को ही गढ़ा। वह स्त्री पुरुष के टूटते बनते बिगड़ते प्रेम संबंधों यौन संबंधों तक ही सीमित रहा। इस तरह के स्त्री लेखन पर विश्वविद्यालयों में एमफिल पीएचडी करवाई गई। मन्नु भंडारी की कहानियों में मानवीय संबंध, प्रेम का स्वरूप, संबंधों की जटिलताएं, उषा प्रियंवदा की कहानियों में स्त्री पात्र आदि आदि। इस तरह के स्त्री लेखन पर जो शोध कार्य हुआ भी वह अधिकतर लड़कियों ने ही किया। विचित्र विरोधाभास तो यह है कि उषा प्रियंवदा की कहानियों में स्त्री यथार्थ को स्वीकारने का साहस तक उन शोध छात्राओं में भी नहीं था। उस साहित्य पर काम करने, उन्हें पढ़ने तथा लड़कियों में संकोच, हिचकिचाहट, मौन अस्वीकृति थी। कारण विरासत में प्राप्त हुए पैतृक संस्कार, शिक्षा और चेतना। आज भी कोई स्त्री यदि कृष्णा सोबती, तस्लीमा नसरीन, महाश्वेता देवी को पढ़ती है तो पढ़कर आश्चर्य ही व्यक्त करती है कि ये कैसी लेखिकाएं हैं, उनसे सहमत होते हुए भी उनसे परहेज करती हैं, उस खतरनाक वास्तव से घबराकर पीछे हटती हैं, उसे स्वीकारने का साहस उनमें नहीं है। क्या इसके लिए पैतृक संस्कारों की भूमिका नहीं? पैराचेंज। इस प्रकार के स्त्री लेखन के संबंध में दूसरी जबरदस्त दिक्कत यह है कि उसका अभिग्रहण करने वाली पाठकीय मानसिकता का अभाव ही रहा है। स्त्री पाठिकाएं संस्कारवश परंपरित तरह से पितृक व्यवस्था में जीने मरने वाली हैं। इसीलिए ऐसे परिवर्तनकामी यथास्थितिवादी को तोड़ने वाले साहित्य और उसमें से उभरने वाले प्रश्नों से उन्हें भय भी लगता है और आश्चर्य भी। वह पाठकीय ग्रहणशील मानसिकता नहीं के बराबर है जिन्हें बरसों से यथास्थितिवाद में जीने के जो संस्कार घुट्टी में पिलाए गए हैं, आज उसी यथास्थितिवाद को तोड़ने वाले प्रखर साहित्य में उनकी रुचि भला कैसे हो सकती है? उनकी संवेदना वहां ऐसे साहित्य से मेल खा सकती है? पाठिकाओं, शोध छात्राओं द्वारा किया जा रहा काम, उनकी ढीली ढाली कमजोर भाषा में लिखी गई प्रतिक्रियाएं क्या दर्शाती हैं? लेखन और पाठिकाओं के बीच दूरी, मौन क्या दर्शाता है? उनकी ऐसी साहित्य में कोई विशेष रुचि, आस्था नहीं होती। अपने ही यथार्थ से वे पीछे भागती हैं। उन प्रश्नों पर जिरह नहीं कर सकती जो उनके स्वत्व से जुड़े हुए सवाल हैं। यह क्या विचित्र विरोधाभास नहीं है कि अपने स्वत्व से जुड़े हुए प्रश्नों से ही पाठिकाएं खामोश, प्रतिक्रियाहीन हैं। इस प्रकार विरोधाभास का मुख्य कारण है स्त्री पाठिकाओं के परंपरागत संस्कार, जो उन्हें पितृसत्तात्मक समाज ने विरासत में दिए हैं, जिन्हें उन्होंने पूरी निष्ठा से आत्मसात किया हुआ है। वे अपनी पृष्ठ संख्या 46 परंपरित स्थिति चेतना को नहीं बदलना चाहती। उस साहित्य से उनका संबंध कितना गहरा होता है, इस विषय में अब कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती। स्त्री लेखन का सबसे अहम दायित्व है स्त्री पाठिकाओं को झकझोरना, उनके परंपरित जर्जरित संस्कारों को तोड़ना जिसमें वे बुरी तरह से कैद हैं। इसके बिना स्त्री समाज की सोच नहीं बदल सकती। यह तो खेती से पहले मिट्टी की उर्वरण शक्ति को बढ़ाना है। पैराचेंज। महिला लेखन से महिलाओं को पूर्ण रूप से फीडबैक मिलता है। नारी लेखन नारी मन की अभिव्यक्ति है। नारी ने नारी की गूंगी पीड़ा को लिखा, उजागर किया, उसके मौन को शब्द दिए। पुरुष लेखक के लिए नारी रुमानी ख्याल, यादों की मूरत थी। बेशक नारी लेखन ने नारी पुरुष लेखकों के हाथों से उसकी सुंदर बेजुबान गुड़िया छीन ली और रोती चीखती बिलखती कलपती नारी को सामने ला खड़ा किया है। संदर्भ ग्रंथ है मेहरुन्निसा परवेज, पुस्तक है साहित्य वार्षिकी, वही पृष्ठ संख्या 27। मेहरुन्निसा परवेज ने निश्चित रूप से स्त्री लेखन की जरूरत को स्पष्ट किया है कि नारी के मौन को शब्द नारी ही दे सकती है, उसके दुख को औरत ही समझ सकती है, वह ही पहचान सकती है औरत के शरीर पर अंकित किए गए घावों के निशानों को। पुरुष के लिए स्त्री अब तक क्या थी? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, रमणी प्रेयसी देह, रुमानी ख्याल, यादों की सुंदरी, लेकिन स्त्री ने ही स्त्री के देह पर अंकित खूनी घावों के निशानों को दिखाया है कि किस प्रकार वह उत्पीड़ित उपेक्षित है। विचित्र विरोधाभास तो यह है कि समृद्ध घरानों से अभिजात्य संस्कारों की लेखिकाएं स्वयं को दलित कहलवाने में लज्जा अपमान महसूस करती हैं। दलित की स्थिति में होने के बावजूद भी उनमें दलित होने का एहसास शायद इसलिए नहीं है कि वे कारों वातानुकूलित घरों में नौकर नौकरानियों से सुसज्जित हैं। इसीलिए उन्हें भ्रम है कि उन्हें दलितों की श्रेणी में क्यों रखा गया है। शायद यही कारण है कि स्त्री लेखन के बहुत से सवालों को लेकर उनमें भ्रम और अंतर्विरोध है, दृष्टि धुंधली है, इसीलिए उनके लेखन में अंतर्विरोध मौजूद है और वे तब तक दूर नहीं होते जब तक जीवन के प्रति जीवन दृष्टि में अंतर्विरोध दूर नहीं होते। लेखन और जीवन दो अलग अलग चीजें नहीं है। जीवन के गहरे संघर्षों में से गुजरकर ही लेखक का लेखन और उसकी जीवन दृष्टि विशाल और परिपक्व बनती है। उसमें प्रखरता, जीवंतता और मानवीयता आती है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि स्त्री लेखन यदि स्त्री समाज को ही सही फीडबैक कर रहा है, उनकी चेतना के विकास में सहायक सिद्ध हो रहा है तथा उसमें स्त्रीत्व स्वत्व के प्रति जागरूकता बढ़ रही है तो इसे शुभ लक्षण ही माना जाएगा। आज तक पुरुष लेखन ने क्या स्त्री को फीडबैक दी? पृष्ठ संख्या 47। यदि दी भी तो वह कैसी फीडबैक थी? यथा स्थिति में जीने मरने की या उसे तोड़कर बाहर आने की। ऐसा लेखन भी स्त्री समाज के लिए सही फीडबैक का काम कर सकता है और बखूबी कर भी रहा है। पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित पाठिकाओं की प्रतिक्रियाएं इसका साक्षात प्रमाण है कि स्त्रियों की चेतना में बहुत तेजी से अपने अधिकारों, स्वत्व, अस्तित्व, अस्मिता के प्रति जागरूकता बढ़ी है। उसकी सोच में परिवर्तन आने लगा है। वे अब यथास्थिति में नहीं जीना चाहती। उनके भीतर प्रश्न, जिज्ञासाएं, शंकाएं एवं प्रतिक्रियाएं जगने लगी हैं। क्या यह काम साहित्य ने नहीं किया? मीडिया की भी अपनी भूमिका है, लेकिन वह स्त्री के संघर्ष को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है, जिससे काफी नुकसान भी हुआ है। उपभोक्तावाद का सिकंजा स्त्री को जकड़ रहा है। अभी एक लड़ाई इसके खिलाफ भी लड़ी जानी शेष है। जैसे जैसे स्त्री लेखन रचनात्मक स्तर पर और आलोचनात्मक स्तर पर स्त्रियों के लिए जबरदस्त फीडबैक चेतना जगाने का काम करेगा, उसी प्रक्रिया में स्त्री की दासता से मुक्ति भी होगी, उसकी बनी बनाई मानसिकता संस्कारों से मुक्ति होगी। वह अपनी सुरक्षा, अपने अस्तित्व स्वत्व के बारे में स्वयं सोचना शुरू करेगी। तब शायद वह उन गुलामी की जंजीरों को तोड़ सकेगी, स्वतंत्र ढंग से सोच सकेगी, जी सकेगी। आज वह जीकर भी मर रही है, पल पल प्रतिपल मौत का सामना कर रही है। यह जीना नहीं है, मृत्यु है, गुमनाम मौत। साहित्य कोई सशक्त क्रांति नहीं कराता, अपितु मनुष्य को स्वतंत्र ढंग से जीने, संघर्ष करने की, आगे बढ़ने की समस्या को समझने व उससे निपटने की शक्ति देता है, एक नई दृष्टि प्रदान करता है। यदि आज स्त्री लेखन, स्त्री विमर्श, स्त्री समाज को फीडबैक दे सके तो इससे महत्वपूर्ण भूमिका और क्या हो सकती है। पैराचेज, कृष्णा सोबती का लेखन हो अथवा महाश्वेता देवी का, मन्नू भंडारी का लेखन हो अथवा गगन गिल का, चित्रा मुदगल का लेखन हो अथवा मेहरुन्निसा परवेश का, उसमें स्त्री मुक्ति के लिए जो फीडबैक आ रही है वही स्त्री समाज की चेतना का विकास कर सकेगी। अभी इस दिशा में एक लंबी बीहड़ संघर्ष यात्रा तय करनी है। यही स्त्री लेखिकाओं की सबसे बड़ी भूमिका है कि वे तीसरी दुनिया की शोषित, पीड़ित, दलित स्त्रियों की मुक्ति के लिए लिखे और सोचे, तभी उनका लेखन पुरुष लेखन से दो कदम आगे का लेखन सिद्ध होगा। जिन स्त्री लेखिकाओं की कृतियों में इस प्रकार की स्त्री मुक्ति संघर्ष के संबंधित प्रश्न उठने लगे हैं, उनका कृतित्व किसी भी स्तर पर पुरुष लेखन की तुलना में दोयम दर्जे का न होकर उनसे दो कदम आगे का ही है। क्या कृष्णा सोबती का डार से बिछुरी, जिंदगी नामा, मित्रों मरजानी, ए लड़की या मन्नू भंडारी का महाभोज, चित्रा मुदगल, महाश्वेता देवी, गगन गिल, ज्योत्सना मिलन का स्त्रीत्ववादी लेखन स्त्री के दुख दर्द, उसके अभिशाप और संताप, द्वंद्वों और तनावों, उसकी गूंगी पीड़ा के मौन को वाणी नहीं दे सका। पुरुष लेखकों के लिए स्त्री प्रेयसी, रमणी, कल्पना लोक की अद्वितीय सुंदरी, नायिका, अभिशारिका ही रही है। उसे देवी श्रद्धा बनाकर प्रस्तुत किया गया, लेकिन मानवीय गौरव, प्रतिष्ठा से वह वंचित ही रही। स्त्री लेखिकाओं के लेखन के केंद्र में स्त्री की भयावह समस्याएं हैं, पितृ सत्तात्मक मर्यादाओं की तीखी आलोचना है जिसने स्त्री समाज का खुला दमन किया है। वे उन अभद्र नियमों के खिलाफ संघर्ष कर रही हैं जो स्त्री को उपनिवेश बनाते हैं। वह फॉर्मूला बद्ध लेखन नहीं है और न ही स्त्री पुरुष के संबंधों तक सीमित। क्या मन्नू भंडारी का स्त्री लेखन भी फॉर्मूला बद्ध, सीमित एवं सतही है? क्या उसमें सेक्सुअल पॉलिटिक्स की समीक्षा नहीं है? क्या कृष्णा सोबती का लेखन कम महत्वपूर्ण है? कहना न होगा कि पिछले कुछ एक वर्षों में जिस तरह का लेखन स्त्री लेखिकाओं की कलम से निकला है वह इतना सशक्त, क्रांति धर्मी, चेतना संपन्न, फीडबैक वाला है जिससे कि स्त्री समाज की चेतना विकसित होगी। वह स्त्री के हितों की सुरक्षा करने वाला, उन्हें साहस, आत्मशक्ति, विवेक, विश्व चेतना प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। अभी इस दिशा में जबरदस्त आत्मालोचना, आत्मसंघर्ष की जरूरत है। समाप्त।